శాంతి.
ఓం శాంతి.
ఓం శాంతి.
శాంతి కి సాగర్ సర్వ సుఖం కి సాగర్ సర్వశక్తివాన్ పరమ ప్యారీ పరమాత్మా పితా కీ ప్యారీ సంతాన్ సౌభాగ్యశాలి కన్యాయ కుమారియా ఔర్ కన్యా. కన్యా శబ్ద బడా మా బాప్ కే లియే భాగ్య కా హోతా హై. పతా హై యే కుమారి తో హిందీ భాషా కే కారణ హువా హై. వేసే తో కన్యా భీ సింధీ హిందీ దోనో మే ఆతా హై కామ్. परंतु कन्या एक कोमल हृदय माना जाता. ऐसी कन्याएं बाबा कुमारियों को देखकर एक भी कुमारी क्लास में होती देखो बाबा कितनी कैसी मुरली चलाते साकार में बाबा. కుమారి కే బాబా ఇతనా ఖుషి ఖుషి సే ఉస్కో ఇతనా ఊంచా ఉఠాయేంగే జో వో సమ్జేంగే మే అభీ కా అభీ బాబా కే ఆగే సమర్పణ హో జా. కుమారియోం కో దేఖ్ బాబా కో ఇతనీ ఖుషి హోతీ థీ క్యోంక కనయ్యా కే నామ్ సే గాయా హువా హై कुमारियों के नाम से नहीं. बाप को कन्हैया के कृष्ण वो तो कृष्ण के लिए बोलते हैं परंतु हम कहेंगे कन्हैया के नाम से. कन्हैया का अर्थात कुमारियों का रक्षक. तो ऐसे कन्हैये की प्यारी कहें लाडली कहें कुमारियां. अब आप सबके जीवन आप अपने को कुमारी कहलाते हो. कुमारी सौ ब्राह्मणों से उत्तम. सुना है ना कितना बड़ा महत्व हो गया. सौ ब्राह्मणों से उत्तम कन्या और ऐसी कुमारी बाबा जब देखते थे कहते ऐसी कुमारियां ऐसे अगर हमको दस भी मिल जाए पांच भी मिल जाए तो देखो भारत का कितना उद्धार हो जाता. तो और सचमुच हम उस समय जो भी बहनें थी मेजॉरिटी कुमारियां थी. कोई एक दो चार माताएं होंगी लेकिन बाकी सब कुमारियां थी. तो बाबा कुमारियों को देखकर क्योंकि कुमारियां और इतने बड़े ऊंचे कार्य अर्थात ऊंचे से ऊंचे बाप के आगे इतना बड़ा बाप का कार्य सारे विश्व को परिवर्तन करने का और उसके आगे कुमारियां. कुमारियों को मनुष्य अभी तो फिर भी माताओं कन्याओं की पहले से जस्ती इज्जत है लेकिन इससे पहले तो क्या समझते थे. ऐसे समय पर भगवान ने आकर के कुमारियों को इतना ऊंचा बनाया कन्याओं माताओं को भी इतना ऊंचा बनाया जो विश्वविद्यालय का नाम ही ब्रह्मा कुमारी. ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और ब्रह्मा कुमारी के नाम से ही हम सब मशहूर हैं, चाहे माताएं हैं चाहे भाई भी हैं, कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का। तो ब्रह्मा की कुमारी, ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, नामी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की कुमारी, जो ब्रह्मा प्रजापिता अर्थात सारी प्रजा का, दुनिया प्रजा ईश्वर की सारी प्रजा है ना, और जो भी राजकर्ता होता है उसको उसके आगे प्रजा, इस बाकी सबको प्रजा ही कहा जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा जो सारी विश्व को एक तरफ तो परिवर्तन कराता है और साथ साथ परिवर्तन के साथ साथ उसका मालिक, उसकी राजाई भी देता है, ऐसा ऊंचा भाग्य देने वाला, ऐसा ऊंचा भाग्य बनाने वाला और इतना ऊंचा बनाने वाला, जिन्होंने जो कन्याएं माताएं जो देखते थे तो उनके तरफ कैसी नजर थी और बाप ने उनके प्रति कितनी ऊंची नजर रखी, और वो बाप की ऊंची नजर ने कन्याओं माताओं को इतना ऊंच बनाया है जो विश्व के महाराजा और महारानी, कहा जाता है राज राजा का और हुकुम सरकार का, राज रानी का, सुना है ना, सुना है, ये हुकुम सरकार का माना, सरकार माना जो भाई होते हैं साथ में, और राज रानी का, राज चलाना, जैसे अभी भी घर का राज कौन चलाते हैं, घर को चलाना, घर को व्यवस्थित रीति से चलाना और उसी की उसको रखना, ये किसका काम है, भाई कर सकते हैं, भले विद्यालय को के बड़े भाई होते हैं, कोई भी प्रकार से देखो, और बिजनेस में भाइयों का अधिक नाम आएगा, परंतु ईश्वर के संबंध में फिर भी कन्याओं माताओं को इतना ऊंच बनाने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप, जिसने कन्याओं माताओं को इतना ऊंच बनाया, जो शक्ति अवतार मान करके गाई जाती है, भाइयों में ऐसा नहीं कहेंगे, भले वो भी देखो ऐसे गणेश की कितनी पूजा होती है, इस प्रकार से ऐसे नहीं नहीं है, परंतु ये कंट्रास्ट होने के कारण क्या समझते थे, और एक ही समय के अंदर अभी उनको क्या समझते थे, और उसी समय ऐसी दृष्टि से होते हुए भी भगवान ने उनको इतना ऊंचा बनाया जो सारे विश्व के अंदर शिव शक्ति नाम से गाई और पूजी जाती है। तो कन्याओं को अपने जीवन पर कितना नाज, कितना फखर होना चाहिए कि हम वो कुमारियां जिन्हों को भगवान ने इतना ऊंचा बनाया, जो आज हमें पूजनीय योग्य बना दिया। जब हम बने थे तो क्या बोलेंगे, आगे क्या कहेंगे, जब कल्प पहले बने हैं तो अब भी बनेंगे जरूर, अंदर ही अंदर अपने को ये पक्का करना है, हमें तो बनना ही है, क्योंकि हमारा तो गायन गायन तो सिर्फ क्या पर पूजन भी होता है, रूप तो अलग अलग रहेगा, वो ही रूप थोड़े ही रहेगा। वैसे भी अनेक जन्म हम लोगों ने लिया है, परंतु ये अंतिम जन्म में भगवान ने हमसे ऐसे ऊंच कर्म कराए जो हमारा गायन और पूजन होता आ रहा है अब तक, जो हम भी खुद को विस्मृत हो गए, भूल गए। जानते थे क्या हम ही शिव शक्तियां हैं? शिव शक्तियां भी तो कुमारियां ही गाई हुई है ना। तो इसलिए हमें अपने भाग्य को याद करते, क्योंकि वैसे तो जानते नहीं, वैसे तो ये बातें पहले इतनी सुनी नहीं। कितने इतना उमंग और हुलास से आपको बातें बताई नहीं, और अभी आपको इतनी ऊंची नजर से देखने वाला वो जो हमें याद दिलाता है, अरे अरे तुम ही तो वो ही शक्तियां हो जो शक्ति रूप से गायब और पूजी जाती हो। और अब हम कहेंगे हम कैसे वो हो सकती हैं? परंतु भगवानों वाच, और देखो शक्तियों को तो सब मानते हैं, कौन कहेगा नहीं। और कन्या भी कहो तो मानते हैं, कन्या सब ब्राह्मणों से उत्तम है। ब्राह्मण तो उत्तम जाति मानी जाती है, लेकिन जाति उत्तम है, लेकिन कन्या सब ब्राह्मणों से उत्तम मानी जाती है। तो बाप ने हमें कितना ऊंचा कार्य कराया है, इतना ऊंच बनाया जो हम कन्या रूप में भी सौ ब्राह्मणों से उत्तम। ब्राह्मण आजकल माने जाते हैं ना, ब्राह्मण उसको कितना विधि पूर्वक बुलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। ऐसे ब्राह्मणों से भी, ऐसे सौ ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, तो कन्या का कितना महत्व हो गया। ऐसा महत्वपूर्ण यह हमारा जीवन, जब ऐसा जीवन हमें मिलता है, उस जीवन को कितना ऊंचाई से, अर्थात जीवन का आधार, जीवन को हम कैसे चलाते हैं? जैसे विचार वैसे कर्म, ऐसे होगा ना। तो इतना ऊंच विचारों से हम अपनी जीवन में ऐसा श्रेष्ठ कर्म करते रहें, जिस कारण जो हमारा गायन है, कम से कम खुद को तो लगे बरोबर हम ऐसा सीख रहे हैं, हमें ऐसा योग कहें अथवा ऐसी शिक्षा मिल रही है जिससे सचमुच हमारा ऐसा जीवन बन जाता है जो हम गायन और पूजनीय योग्य भी बन जाते हैं। अब जब हमें अंदर में ये विश्वास, अर्थात ये बात समझो अच्छी लगती है, तो होता है ना, जो अच्छी लग जाएंगे, मार्केट में जाओ, जो चीज अच्छी लगेंगी, भले उस समय ले भी नहीं लियो, लेकिन मन के अंदर आ जाएंगी और वो फिर याद आती रहेंगी। आगे चल के फिर भी कोई भी मिलेगा, अपना ही होगा, तो उसको बताते रहे, होता है ना ऐसा। ये भी जीवन ऐसी है, हमारी बाबा ने ऐसी जीवन बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई पता नहीं, परंतु गायन पूजन है। और अभी जो सृष्टि चक्र को जानने वाला, बल्क कहें जो सृष्टि का, नई सृष्टि का रचयिता बाप, उन्होंने बताया है कि कन्याएं वो जो सौ ब्राह्मणों से उत्तम, और वो उत्तम कन्या वो फिर क्या बनती है, क्या बनती है? विश्व की मालिक, महारानी। तो ऐसा बनाने वाला बाप, जब इस बात को हम अंदर में रियलाइज करते हैं, रियलाइजेशन कैसे होती है जानते हो? कोई भी बात को रियलाइज करना होता है तो कैसे रियलाइजेशन होती है? है कोई हिम्मतवान बताने वाला? एक्सेप्टेड, पर एक्सेप्टेड किस कारण से? वो कौन से कर्म, कौन से कर्तव्य? तो जब अब इस बात को हमें अंदर ही अंदर, अब तो आप मनन करके समझो क्या पर सुनी हुई बातें हैं, आप भी तो कुछ समय से ज्ञान में चलते हो ना मेजॉरिटी, और इसका जवाब अगर पूछें तो आप जवाब दे सकते हो बिना बिना रीति से। तो ये बात कहने का मेरा भाव यही है कि जब बाबा ने हमें इतनी ऊंची नजरों से देखकर इतना ऊंचा बनाया है, जो आज दुनिया में हमारा भिन्न नाम रूप से गायन और पूजन हो रहा है, भले हम सारे चक्कर में आ गए, 84 के चक्कर में आए, सत्युग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से अभी कलयुग पापात्माओं की दुनिया में आके पहुंचे हैं, फिर भी हमारा गायन इतना अनादि काल से चला आ रहा है। अगर आप सोचो, अगर इस अपने भाग्य को याद करो और इस प्रकार से सोचो तो समझते हो हमारे अंदर खुशी इमर्ज होंगी। कान सबके नहीं हिल रहे हैं, आपके तो खुशी में क्या होते हैं, जब खुशी में हंसते हो तो क्या होता है, 32 दांत बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हमारी बाबा ने ऐसी खुशी की जीवन बनाई है, जो बात बाबा की सुनते जाए बाप याद आए और अंदर में खुशी इमर्ज होती जाए। इसलिए अपने भाग्य को याद करते हुए ये अंदर में निश्चित करो, जब गायन है हमारा, पूजन है, चलो हमें पता नहीं है पर हमें बताते हैं जिन्होंने इस बात को स्टडी किया है, जिन्होंने समझा है, हमारे बोलने से भी तो आपको समझ में आएगा कि ये बात सचमुच राइट लगती है या नहीं, आता है ना समझ में, और है ना प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो ऐसा ऐसा त्योहार होता है, कुमारियों को बुला के खिलाते हैं और कितनी विधि से उनके पांव की पूजा भी करते हैं, और कोई की भी ऐसी पूजा नहीं होती है, माताओं की होती है, कुमारियों की होती है, भाइयों की होती है, कुमारियों की होती है। तो कुमारी जीवन इतनी भाग्यशाली है, साकार में बाबा कुमारी को देखते थे, बस बाबा की पूरी मुरलियां जब तक वो सामने होंगी, बाबा उसके लिए कोई ना कोई बात बोलता जाए, वो खुशी में जैसे कि अंदर से नाचती रहती है, और फिर जब ऐसी बातें बाबा की सुनेंगी तो बाबा भूलेंगा, वो बातें बाबा की उसको बार बार याद आती रहेंगी, जाएंगी इधर से तो भी बाबा को पत्र लिखेंगी, बाबा हमें आपकी याद बहुत आती है। तो ऐसे जिनको भगवान देख करके भी खुश होते हैं, जिन्होंने भले सारा कल्प पाठ बजाया, ऐसी हमारी आत्माएं, मना हम आत्माएं ऐसी भाग्यशाली या कहें ऐसी स्ट्रांग, पूरा कल्प पाठ बजाया है, जो सारा कल्प आदि से अंत तक कोई भी धर्म वाला नहीं, एक ही हम शिव शक्ति, हमारा नाम शिव शक्ति सेना भी गाया हुआ है, ऐसी ऐसी बातें अपने अंदर में बार बार याद करते, पहले तो अपने को खुशी में और निश्चय में पक्का करो, फिर देखो आपकी आप पे ही छोटी मोटी बातें छूटती जाएंगी, क्योंकि खुद कोई आएगा ये अच्छी बात नहीं है। जब कोई कहेगा तो उसका बुरा नहीं लगेगा, चलो ये बोलते हैं हम इस बात को परिवर्तन करें, खुद ही अंदर में आना चाहिए, तब कहेंगे बरोबर आपको बाप पर अटल विश्वास है, अथवा आप इस नॉलेज को इतना ऊंचा समझ करके और ऐसी पढ़ाई पढ़ रही हो। अब तो ऐसे ही कहेंगे, जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसका स्टेटस ऊंचा ही होता है, जब उस पढ़ाई में प्रवीण हो जाते हैं तो कोई भी कार्य में उस मनुष्य को प्रवीणता चाहिए, तो प्रवीण को ही उस कार्य के लिए चुनते हैं। तो बाबा ने हमें विश्व कल्याण के कार्य के लिए चुना है और हमारे से अब गुप्त रूप में वही कार्य करा रहे हैं। जब भगवान ने हमें वो कार्य दिया है तो जरूर है उस कार्य में हमारा ही तो कल्याण है। भगवान हमारी जन्म पत्री को जानकर हमारे से इतना ऊंचा कार्य करा रहे हैं, ऐसे कार्य में हम स्वयं रुचि लेकर के जितना करेंगे तो उस कार्य के अंदर जितना हमें समझते हैं या जो हमारे में बाप ने उम्मीद रखी है वो मैं बाप की उम्मीदों को पूरा कर सकेंगी, ये हमारे अंदर उमंग उत्साह जागृत रहना चाहिए। देखो पढ़ाई में उमंग रहता है ना, परीक्षाएं आएंगी ऐसा पढ़ें ऐसा, रात रात जाग करके सवेरे, किसको सवेरे उठने की आदत नहीं होती है, सवेरे सवेरे उठ करके अकेले, सब माँ बाप सोए हुए होंगे, उठ करके अकेले इधर छोटी सी लाइट जगा के भी हम पढ़ते रहेंगे, बाय रोशनी में जाके पढ़ेंगे। तो ये है अपना उमंग और उत्साह, जितना उमंग है जितना हमारे अंदर उस बात को ग्रहण करने का उत्साह है, तो उत्साह से कोई भी भारी बात, कोई भी ऊंची बात, कोई भी मुश्किल बात हम उसको सीख सकते हैं। और अभी तो हमारी पढ़ाई कितनी सहज है, भले कहेंगे हम बैठते हैं योग में तो हमको ये पर मैं समझती हूँ बचपन में के माना छोटी एज में कोई इधर उधर के बहुत संकल्प नहीं आते हैं, हमें तो जहाँ तक अनुभव है आज के जमाने में, भले आपकी आप तो अभी एकदम छोटी एज तो नहीं कहेंगे, परंतु आज के जमाने में कुमारियाँ, आगे तो कुमारियाँ जरा थोड़ी नजर बंद होती थी का आंख भी उठा के नहीं देखेंगी जो कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, आजकल तो फ्रीडम है, फ्रीडम के कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत है, एक्सीडेंट अपने से भी होता है और दूसरे भी हमारे पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, जो हमारी कुमारी जीवन स्वच्छ जीवन मन जाती है, कुमारियों को सब ब्राह्मणों से उत्तम, ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है मनुष्य श्रेणी के अंदर, और उसमें सब ब्राह्मणों से ऊंचा, जब इतना ऊंचा हमारा मान है, इतनी ऊंची नजर से हमें देखते हैं, तो हमें अपनी ऐसी जीवन को कितना ऊंच बनाना, अर्थात हमें अपने जीवन में कितने ऊंच अर्थात स्वच्छ अच्छे काम करने चाहिए। अभी अच्छे काम क्या क्या है दुनिया के रीति से तो अलग बात है, अभी तो बाबा ने हमें बताया है अच्छे से अच्छा काम, जो हम स्वयं भी भगवान का बनकर औरों को भी बाप का बनाते जाएं। भगवान को कोई दुनिया जानती नहीं है, मानते हैं वो सृष्टि का रचता है, मानते हैं वो सब जगह व्यापक है, हम कुछ भी करेंगे, पाप कर्म करेंगे, किसको दुख देंगे, कुछ भी करेंगे तो वो हमें देखता है। जब इतना भी मानते हैं तो हमें उन कर्मों से तो बच के रहना है, किसको बुरा भला बोलना, किसके प्रति ऐसा सोचना, ये सब बातें अभी हमारे में नहीं होनी चाहिए। और इन सब व्यर्थ से बचने की सहज विधि, देखो बाप हम बच्चों पर कितना मेहरबान, जो स्वयं रोज हमको ज्ञान अमृत पिलाते रहते हैं। ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, ज्ञान को हम बाबा ने हमें पढ़ाई के रीति से पढ़ाया है, आज एक लेसन, कल दूसरा लेसन, परसों तीसरा लेसन, तो इसको पढ़ाई के रीति से, अभी आप सबको पढ़ाई का तो अनुभव है ना, चलो किसने थोड़े दर्जे पढ़े होंगे, कोई ने बड़े दर्जे पढ़े होंगे, पर है तो अनुभव तो है ना। जब पढ़ाई होती है और 12 मास में फिर लास्ट में एग्जाम होता है तो फिर कितना ध्यान से हम काम करते हैं। और अंदर में ये लगा रहता है, मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, होता है ना ऐसा। इसी प्रकार से मामा ने अभी बताया है, बच्चे अभी समय बहुत कम है, कलयुग का अंत है। अंत जब आता है, देखो जीवन का बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में वो खुद ही समझते हैं, पता भी कभी भी शरीर जा सकता है, तो उसमें समझदार वो जो भी अपना होगा उसको समेटते जाएंगे, और जो भी अपने बच्चे वगैरह होंगे तो उनको बिठा करके और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह का अंत दे देंगे, जिसमें भी विश्वास या जो कुछ भी बंटवारा करना होगा या ये करना होगा। आगे जमाने में भी ऐसे ही होता था, क्योंकि आगे जमाने में तो परिवार का आपस में प्यार था, तो वो पहले से ही उनको अपना बंटवारा करके भाई सब सुखी रहे। अभी के समय और उस समय में तो फर्क है ना, पहले के जमाने और अब, कुछ बातें अभी की अच्छी है, कुछ बातें पहले की अच्छी थी। कहने का भाव यही है, अभी हमें जब हमने माना है, निश्चय किया है, भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो भगवान की पढ़ाई पढ़ने से हमें कौन सा स्टेटस मिलेगा, मिलता है। भगवान की पढ़ाई पढ़ने से भगवान से हमें कौन सा स्टेटस मिलता है इस पढ़ाई से? हाँ, जवाब देने का उमंग नहीं आता है क्या? नहीं आता है जवाब? भगवान की पढ़ाई वो हमें विश्व का महाराजा महारानी बनाते हैं। जब इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतना ऊंचा स्टेटस है, और पढ़ाने वाला इतना ऊंचा, जो फिर गुप्त रूप में, गुप्त वेश में आकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो एक तरफ तो कहेंगे वो कितना हाईएस्ट है, और हाईएस्ट जो इतनी ऊंची नॉलेज लेते हैं, जो विश्व का महाराजा महारानी बने, ऐसी ऊंची पढ़ाई, ऊंची प्राप्ति के लिए इस समय में हमें क्या करना है? केवल इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट तो ऐसे कहने में ही आएंगी, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, लेकिन वर्णन करने में कोई सब बातों को जास्ती स्पष्ट नहीं। परंतु ज्ञान माना, पहले ज्ञान माना परमात्मा बाप की पूरी पहचान, और बाप के पहचान के साथ साथ जब बाप की पहचान आ गई तो बाप तो विश्व का पिता है, विश्व का मालिक है, तो उनके द्वारा फिर हमें सारे विश्व सृष्टि चक्र के नॉलेज की पूरी नॉलेज, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। भले आगे इनका हम अर्थ नहीं समझते थे, वो तो दिखाते हैं स्वदर्शन। फिर आया, गला कट गया। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में इसी प्रकार से बातें बताती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? भगवान किसका गला थोड़ी कटेगा, परंतु कौन किस प्रकार का गला कैसे काटा, ये बातें तो फिर बहुत समझने की हो जाती हैं। लेकिन देखा जाए, इतना तो पहले ही समझा हुआ है कि हद और बेहद कहें, अथवा ये जो हम कहते हैं बेहद का वैराग, या इन बातों को समझ करके जब आगे बढ़ते हैं, तो इन बातों के लिए अर्थात दुनियावी बातों के लिए हमें अंदर में बड़ा वैराग चाहिए। और इसके लिए अभी के समय, अभी की स्टेज प्रमाण, अभी जो हमारे ज्ञान की स्टेज है, और अभी जो आप लोग इतने समय से सुन सुन करके इन बातों में तो पक्के हो गए हैं, जानकारी में तो सब पक्के हो गए हैं, लेकिन जानकारी के साथ साथ हमने अपने जीवन का फैसला क्या किया है? जो जानकारी हमें बताती है, जब हम बाप को जानते हैं, जब हम भगवान को समझ लेते हैं और उनके साथ उनके महावाक्यों का अपने जीवन में पालन करके चलते हैं, एक तरफ तो हमारी जीवन सदा सुखी बन जाती है, दूसरे तरफ हमें भी फिर ऐसी जीवन मिलती है जिससे हम सृष्टि पर कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, जिसके प्राप्ति का हमें पुरुषार्थ करना पड़े। और उसके लिए अभी जो हमें नॉलेज मिलती है, जो हमें बाप की शिक्षा मिली है, जो हमें निरंतर अपने मन को एकाग्र रख करके और उन्हीं बातों में हमारा पूरा ध्यान लगा रहे, और उस ध्यान से समझने से फिर उन्हीं बातों की धारणा हमारे जीवन में बनती जाए, उसके लिए हमें अपने में ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा मन और बुद्धि बाप की याद और बाप की नॉलेज के सिवाय कहां भी भटके नहीं। जितना हम बाप को समझते हैं, बाप की नॉलेज है, पर बाप से मेरा संबंध, बाप तो हम कहते हैं लेकिन उस संबंध का हमें अंदर जिगर में विश्वास और वो अनुभव हो, उसके लिए जितना जितना हम बाप के शिक्षाओं को, आज्ञाओं को पालन करते चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में ऐसे ही कर्म होते रहेंगे, जिन कर्मों के आधार पर हम बाप को और बाप की शिक्षाओं के द्वारा बाप के परिचय को समझ करके स्वयं को भी ऐसा ही बनाते जाएंगे, तो हम उसी प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे। जो फिर प्राप्ति भगवान बताते हैं कि जब तुम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा, जब अपने मन को अर्थात अपना मन बुद्धि, बुद्धि तो है विचार शक्ति, और मन है संकल्प शक्ति। संकल्प के अंदर हमारा ये विश्वास पक्का हो और उस पक्के विश्वास से जो जो उसके प्रति हमें शिक्षाएं मिलती जाए उनको हम अपने जीवन के कर्मों में अर्थात कर्म इंद्रियों से हम ऐसे कर्म कराते रहें जिन कर्मों से जो मेरा खाता बने उस खाते के अनुसार हम अपना भाग्य ऊंचा बना सकें। ऐसे जब हम अपने अंदर चिंतन की धारा बना देते हैं और उसी चिंतन की धारा के अंदर जब ऐसा हमें साधन मिलता जाता है अर्थात हम ऐसे साधन लेते जाते हैं, लेते माना अपने सामने ऐसी बातें विश्वास में ला करके और करते जाते हैं, करने से ही साधन के सिद्धि का पता चलता है, करने से ही लोगों को विश्वास होता है। बरोबर जो हम देते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हम बरोबर कर्मों में देखते आए हैं। तो जब ऐसी हमारी जीवन कर्म योग में रहते और कर्म करते रहें, जिसको कर्म योग के द्वारा ये चैतन्य शक्ति जो काम करती है उस शक्ति को हम ऐसा बनाते जाएं जो जो कर्म करे सोच समझ कर करे, ऐसा कोई गलत काम न हो जिसके पश्चाताप में हमें भोगना भोगनी पड़े। ये बात हम अपने को बहुत विश्वास से सुनाते रहते हैं और उसको इसी प्रकार से हम अगर करते चलेंगे तो हम अपने जीवन में इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी अनुभव कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया है। बच्चे देखते हुए अभी की दुनिया में जो देखते हैं, देखते हुए न देखें, क्योंकि अभी की दुनिया में अगर मनुष्यों को देखते हैं उनके अंदर भी पांच विकार हैं, उनकी दृष्टि वृत्ति भी ऐसी है। इसलिए भले आंखें उनको देखती हैं, हमारा जितना कर्म है जो कर्म जरूरी है वो हम करते रहें और बाकी जो हमें समय है वो हम अपने चिंतन में ऐसा मग्न रहें जो हम अपने स्वरूप की ओरिजिनल क्वालिटीज अपने में जागृत कर सके, क्योंकि शरीर की वैल्यू तभी होती है जब हमें उसकी पूरी नॉलेज से हम अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके ऐसी अपनी जीवन कर्मों में बनाते हैं। जो मनुष्य जीवन अति दुर्लभ मानी गई है उस दुर्लभ जीवन को हम इतनी ऊंचाई से उस जीवन का हर पल हर समय अपना वैल्यूएबल समझ करके उसके अंदर हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते जाएं। कर्मों का आधार मेरे विचारधारा पर है। पहले हमारी विचारधारा इतनी श्रेष्ठ बनी रहे, श्रेष्ठ विचारधारा के लिए बाबा तो हमें रोज रोज समझाते रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं, जिसको अगर हम अपने अंदर सोचें और सोच करके उसको समझते जाएं, तो हम उन शुद्ध विचारों से अपने जीवन के अंदर ऐसे श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा अपना ये चैतन्य जीवन ऐसी बना सकती हैं जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं वो हमारे जीवन के कर्मों में लाकर और हम अपने जीवन को ऐसा बनाते जाएं। क्योंकि लक्ष्य तो हमें मिला हुआ है, लक्ष्य के आधार पर लक्षण उसकी नॉलेज मिली हुई है, नॉलेज के आधार पर हम अपने जीवन के अंदर उन लक्षणों को अपने कर्मों में लाने का प्रयत्न करें। समझ में तो हर बात सबके आ गई है, लेकिन समझते हुए हम अपने, क्योंकि कहा जाता है जैसा कर्म ऐसा मेरा संस्कार, जैसा संस्कार ऐसा मेरा जन्म। इसलिए कर्म पहले कर्मों में श्रेष्ठता, कर्मों में श्रेष्ठता लाने से पहले विचारों में श्रेष्ठता आएंगी, तो कर्मों में श्रेष्ठता आएंगी, कर्मों में श्रेष्ठता आने से फिर हमारे कर्म ही हमें ऐसा योग्य बनाते जाएंगे जिस योग्यता के अनुसार हम अपने जीवन में अपना स्टेटस ऐसा बना सकेंगे और उसी स्टेटस के अनुसार फिर दिन प्रतिदिन हमारे कर्मों में भी ऐसी श्रेष्ठता, व्यवहार में इतनी दिव्यता और फिर विचारों में इतनी शुद्धता। जब इस प्रकार हम अपने जीवन के कर्मों पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि कर्म का आधार हमारे विचार पर है, विचारों में शुद्धता है तो हम कर्म भी अच्छे करते जाएंगे। इसलिए कर्मों की श्रेष्ठता का आधार अरे विचारों की शुद्धता है, कर्मों की शुद्धता और विचारों की श्रेष्ठता। क्योंकि विचारधारा तो अंदर ही अंदर चलती है, कर्म तो हम कर्म इंद्रियों से करते हैं जो रिजल्ट से पता चलता है, और उसी रिजल्ट के अनुसार फिर हमारा भविष्य बनता है। इसलिए ऐसी बातें जो हमारे को इसकी नॉलेज मिली हुई है, उस नॉलेज को हम बार बार अपने अंदर स्मरण करते, जितना हम स्मरण अर्थात उनको मनन करेंगे, मनन करने से हमारे अंदर उसकी समझ पक्की होती जाएंगी। करने की विधि तो हमें बताई भी जाती है, लेकिन समझ हमारी पक्की हो और हमारे समझ के अंदर ये विश्वास जागे तो मैं कर सकती हूँ, तब ही हम फिर अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा वो कर्म करते उसकी रिजल्ट स्वयं भी देख सकते हैं। और ये बड़ी सहज बात है, जब हम अपने में अपने से कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो स्वाभाविक हमारे अंदर खुशी होती है, शक्ति अनुभव होती है, जिस कारण फिर हमारा वो व्यवहार सर्व से उसी प्रकार से होता है। क्योंकि हर बात का संबंध विचारधारा, कर्म, कर्म से व्यवहार, ये सब बातें जीवन के अंदर इन सब कर्मों का आपस में बड़ा संबंध है। इसलिए हमें स्वयं पर इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कर्म जैसा विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म ऐसा ही मेरे संस्कार बनेंगे अथवा ऐसा ही मेरा भविष्य प्रारब्ध बनेगी। इसलिए सदा हम जो हमें नॉलेज मिली है उस नॉलेज को हम अंदर ही अंदर स्मरण करते अपने बुद्धि में अच्छी रीत समझ लें और उस समझ के आधार पर हम अपने को याद दिला करके स्वयं के कर्म इंद्रियों से ऐसा कर्म कराएं, क्योंकि कर्म कराने वाली, समझने वाली, सोचने वाली तो मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर आदि से अंत तक की नॉलेज समाई हुई है। जितना जितना हम उसको समझते हुए कर्मों में लाते हैं, कर्म से हमारे आगे उसका प्रत्यक्ष फल नजर आता है, जिससे हम स्वयं को समझा सकते हैं, स्वयं को विश्वास दिला सकते हैं कि इन कर्मों का फल ऐसा ही होता है। पहले तो उसकी नॉलेज को स्मरण करने से फिर उसका परिणाम देखते हैं, और उस परिणाम को देखते हुए जब हम अपने को उन कर्मों में चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली विश्वास से, हिम्मत से, जब अपने को उन कर्मों में चलाते हैं तो कर्म का फल, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, खुशी और शक्ति। बुरे कर्मों का फल खुशी तो मिल नहीं सकती, तो शक्ति कहां से आएगी? पहले विश्वास से शक्ति, निश्चय विश्वास, और निश्चय का और पक्का शब्द कहें, निश्चय की और परिभाषा कहेंगे दृढ़ विश्वास। जब उस निश्चय से हम कर्म करते हैं, उसकी रिजल्ट हमें अच्छी मिलती है, उस रिजल्ट के आधार पर हम फिर कदम आगे बढ़ाते हैं, और जितना जितना उन्हीं कर्मों के आधार से हम स्वयं को आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमें उसका परिणाम मिलता जाता है। जो और भी उसको एप्रिशिएट करते हैं और उस रिजल्ट से हमारे अंदर खुशी और उमंग बढ़ता जाता है, और फिर जितना जितना वो ऐसे कर्म हम अपने जीवन में करते जाते हैं तो हम अपने में आगे बढ़ना अनुभव करते रहते हैं। इनके लिए हमारे अंदर सदा उमंग और उत्साह बना रहे, जिस उमंग से जब हमें यथार्थ बात समझ में आ जाती है तो उस समझ को हम उमंगों से अपने कर्मों में लाएं, क्योंकि रिजल्ट हमको कर्म से मिलेंगी, न कि सिर्फ सोचने से। सोचने से समझ में आ जाए तो फिर जब हम कर्म में लाते हैं, कर्म से हमको रिजल्ट मिलती है कि जब अच्छा समझ में आया है और यथारथ है तो कर्म से मुझे उसकी रिजल्ट अच्छी मिलेंगी, एप्रिशिएट करेंगे, खुद को खुशी होंगी, और वो खुशी हमें कर्मों में अथवा जीवन में आगे बढ़ाती जाएंगी। और जितना हम विश्वास से, निश्चय से और सच्चाई से करते चलेंगे, हमें उसकी रिजल्ट मिलती रहेंगी। और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए आगे बढ़ते रहें। अगर ऐसा लक्ष्य हम अपने जीवन के अंदर पक्का रखते हैं, और केवल लक्ष्य नहीं पर लक्ष्य प्रमाण कर्म, लक्ष्य प्रमाण जितना हम कर्म करते जाएंगे, कर्मों से हमें प्रत्यक्ष अनुभव होगा, और उसकी प्रत्यक्ष रिजल्ट मिलने से हमारे अंदर और उमंग उत्साह बढ़ेगा, औरों को भी उस बात पर विश्वास बढ़ेगा, जिस कारण वो औरों का विश्वास भी मुझे सहज आगे बढ़ाता जाएगा। इसीलिए जो भी बात हमें समझाई जाती है और हमें अच्छी रीत समझ में आती है, हम अपने प्रैक्टिस में लाएं, प्रैक्टिस से अपनी रिजल्ट को देखें, और रिजल्ट हमें उसकी यथार्थ मिलती है। जो बात समझाई गई है, समझ में आई है, जो रिजल्ट हम चाहते हैं और हमें बताया गया इस प्रकार से होंगी, और वो ही रिजल्ट हमें मिलती है, तो हम उन्हीं उमंगों से, उसी खुशी से उस अपने कार्य को, उस अपने कर्मों को आगे बढ़ाते चलें, और उसी रिजल्ट पर पहुंच करके हम बाबा को अपना सबूत दें। क्योंकि कर्मों का सबूत तो प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए विश्वास से सत्यता हमारे अंदर, सत्यता, सत्यता की निशानी हमारे अंदर खुशी रहेगी। अगर कुछ मिलावट है, अगर उसमें मेरा, उसमें कुछ मिक्स है, तो अंदर इतनी खुशी नहीं रही। ये तो हर एक खुद को खुद समझ सकता है, और ये निशानियां हैं। उन निशानियों को अगर हम समझ जाते हैं और समझकर स्वयं को चलाते हैं, तो हम अपने ठीक रिजल्ट पर, अर्थात जो मंजिल बाबा हमें बताते हैं और जो हम चाहते हैं, यथार्थ रीति अपने को उस मंजिल पर अनुभव कर सकेंगे। वरना सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, थोड़ा पुरुषार्थ करके फिर अटक जाएंगे। यहाँ की बात सुनी, वहाँ की बात सुनी, और उन बातों में हम अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। इसीलिए जो हमें सिखियाएं मिल रही हैं, जो हमें समझ में आ रही है, जो हम चाहते हैं और करने की हमारे में हिम्मत है, उस हिम्मत पर अपना विश्वास रख करके हम अपना कदम आगे बढ़ाते चलें। गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, तो कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सदा मददगार हूँ, केवल आप हिम्मत रखकर सच्चाई से करते चलो, मिलावट न हो। आज का जमाना जरा मिलावट का है, इधर उधर फिर थोड़ा सा मन बदलने वाले भी मिल जाते हैं। इसलिए हम अपने मन को भटकाएं नहीं, यथारथ बातें बताई जा रही हैं, यथारथ को यथारथ मानकर, यथारथ समझकर हां हमारी बुद्धि एकाग्रता पूर्वक इस बात को महसूस करके अनुभव करती है। बरोबर इसमें हमारा कल्याण है। जब ऐसा मन में प्रतीत होता है तो उस बात को हम करना शुरू करें, रिजल्ट तो फौरन हमें मिलती है। नहीं मिलती है तो थोड़ा सोचें या किसकी मदद लें समझने अथवा करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, थोड़ा समझने समझाने की मदद लें तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। बाप ने हम बच्चों के लिए मार्ग बड़ा सहज रखा है, इसलिए हम उसको सहज समझकर, क्योंकि अभी तो हम सब बातों को तो समझ गए हैं, मार्ग को भी समझ चुके हैं, रिजल्ट को भी जान चुके हैं, केवल करने की हिम्मत, अपनी यथारथ बात को समझ, स्वयं में वास्तविकता को जागृत करते अपने को सच्ची राह पर चलाने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले, बाप में उसका प्रत्यक्ष प्रमाण फौरन अनुभव कराते हैं। बाप तो इतना मेहरबान है, बच्चे केवल सच्चाई से बाप के ऊपर निश्चय रखकर, बाप के बोल को महावाक्य समझकर करते रहे तो बाप उसका उजूरा फौरन अनुभव कराते हैं। इसलिए हम स्वयं भी ऐसा विश्वास पात्र बनकर, स्वयं से भी इतना विश्वास पात्र बनकर अपने को पूर्ण रूप विश्वास में रखकर कदम बढ़ाएं, बढ़ते चलो, रुको नहीं, मंजिल नजदीक होती जाएंगी और आखिर हम मंजिल पर पहुंचेंगे जरूर। ओम शांति शांति।
बहुत बहुत थैंक्स।